से पहले आज से ज्यादा, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, इतनी सुहानी ऐसी मीठी, इतनी सुहानी ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। संजो कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं, इसको संजो कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं, मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे, देखो तो कैसे खिले हैं। ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है, सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। ये पल जो बीत रहे हैं इनके नशे में दिल मेरा गाने लगा है, ओ इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे, यही आज तक नहीं मिली आज से पहले। आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली आज से पहले।
ओम शांति। ईसाई धर्म में एक काल्पनिक कहानी है जिसमें दिखाया है एक घने जंगल में तीन वृक्ष है और वो तीनों वृक्ष आपस में बात करते रहते हैं, हर एक अपने जीवन के विषय में बताता है, क्या उनके स्वप्न है, क्या वो बनना चाहते हैं, क्या उनके जीवन का लक्ष्य है। तीनों ने ही बहुत बड़े बड़े स्वप्न देखे हैं। पहला वृक्ष कहता है मैं चाहता हूं कि मुझसे ऐसा एक बक्सा तैयार हो जिसमें हीरे जवाहरात मोती रखे हो। मैं उस कार्य के लिए काम में आऊं कि मेरे से ऐसा एक बॉक्स तैयार हो कि जिसमें बहुमूल्य रत्न रखे जाए। दूसरा जो वृक्ष होता है वो कहता है, मेरी आकांक्षा है, मेरा स्वप्न है कि मैं एक बहुत बड़ा जहाज बनूं जिसमें राजा महाराजा प्रवास करे। तीसरा कहता है, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं इस संसार का सबसे बड़ा पेड़ बनूं, जब लोग मुझे देखे तो मुझे देखकर उन्हें भगवान की याद आए, इतना ऊंचा, आकाश को छूने जैसा। कुछ समय के बाद कुछ लकड़हारे उस जंगल में आते हैं। वो दोनों पेड़ खुश हो जाते हैं कि जो उनके स्वप्न थे शायद साकार होंगे। पहले पेड़ को काटा जाता है, वो पेड़ बहुत खुश होता है, अब मैं एक ऐसा बक्सा बनूंगा। और वो काटने वाला भी सोचता है, इसको ऐसा एक बॉक्स बनाऊंगा। दूसरा भी खुश होता है क्योंकि काटने वाला लकड़हारा सोचता है, इसका मैं एक नाव बनाऊंगा। तीसरा दुखी होता है क्योंकि उसको तो कटना ही नहीं था, क्योंकि वो तो चाहता था कि बहुत ऊंचाई में रहे, तो वो दुखी होता है। परंतु बाद में तीनों ही दुखी हो जाते हैं क्योंकि पहला लकड़हारा उस झाड़ को काटता है और उससे एक बॉक्स बनाता है जिसमें जो पशु पक्षी अस्तबल में रखा हुआ होता है, जिसमें चारा रखा जाता है। उसने सोचा था कि मुझ में बहुमूल्य रत्न रखे जाए, परंतु ये क्या, उसमें अश्व के लिए या जो मवेशी है उनके लिए चारा, तो वो बहुत दुखी हो जाता है। दूसरा ने सोचा था इतना बड़ा जहाज बनूंगा कि जिसमें राजे महाराजे जाए, पर ये क्या, एक छोटी सी नाव, और वो भी एक किसी झील में, कहां उसके स्वप्न थे और कहां ये। और तीसरे की तो बात मत पूछो, वो तो कटना ही नहीं चाहता था, उसके टुकड़े टुकड़े कर एक अंधियारी कोठरी में फेंक दिया जाता है। और ये तीनों ही वृक्ष भूल जाते हैं अपने स्वप्न को। समय गुजरता है और बहुत बहुत समय बाद एक रात उसी अस्तबल में एक शिशु का जन्म होता है, एक छोटा सा शिशु जिसको उस बॉक्स में रखा जाता है। और उसके आते ही जैसे कि प्रकाश हो जाता है, ये पहला बॉक्स। दूसरा एक वाक्य है कि एक दिन एक व्यक्ति अपने शिष्यों के साथ किसी झील में नौका विहार कर रहे, और अचानक बाढ़ तूफान आ जाता है, वो नाव हिलने लगती है और वो सारे लोग घबरा जाते हैं, वो सारे शिष्य, और एक व्यक्ति सोया पड़ा होता है और वो सब उसकी ओर देखते हैं। और वो फिर खड़ा हो जाता है और रोकता है, पीस बी स्टिल, और वो तूफान रुक जाता है और वो नाव फिर खुश होता आता है कि मुझ में कौन सवार है। तीसरा भगवान का पुत्र जब उसको सूली पर लटकाया जाता है, तो जो पेड़ वहां पर पड़ा हुआ था और जिसका ये स्वप्न था कि मैं सबसे ऊंचा बनूं, उसी पर उसे लटकाया जाता है और उसी को लेकर गलियों से गुजरता है। तो सबसे पहले वृक्ष ने स्वप्न देखा था, क्या बन जाऊं, ऐसा एक बक्सा जिसमें बहुमूल्य रत्न हो। और क्या हुआ, दिखाया है कि जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ वह उस अस्तबल में हुआ और उसी को वहां रखा गया जो कि मनुष्यों का राजा था, जो कि ईश्वर पुत्र था। उसकी इच्छा थी उस पेड़ की कि बहुमूल्य रत्न, पर इससे बड़ा बहुमूल्य रत्न और कौन होगा, और उसकी इच्छा पूर्ण हुई। और दूसरा जो पेड़ था, जिसकी इच्छा थी कि इतना बड़ा जहाज बनाओ जिसमें राजा महाराजा जाए, परंतु एक दिन गलीली की वो झील जिसमें जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों के साथ गुजरता है और बाढ़ और तूफान आता है और वो तूफान को रोक देता है, उस पेड़ को बहुत खुशी होती है कि कौन मुझ में सवार है। और तीसरा वो वृक्ष जिसने सोचा था इतना ऊंचा बन जाऊं कि लोग मुझे देखे तो भगवान की याद आए, उस पर सूली लगी। ये तीनों ही पेड़, कभी उन्होंने सोचा नहीं था ऐसा होगा, उनके जीवन में ऐसी घड़ी आएगी, ऐसी वेला आएगी, ऐसा खुशी का अवसर आएगा कि जो अवसर आते ही जीवन बदल जाएगा। आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, इतनी सुहानी, कितनी सुहानी, कितनी सुहानी, इतनी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली। इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले मन चाहे साथी पाके, हम सबके चेहरे देखो तो कैसे खिले, तकदीरों को जोड़ दे ऐसी घड़ी आज तक नहीं मिली थी। आज से पहले, आज से ज्यादा भगवान आकर कहता है कि तुम सब मेरे कौन हो, जीवन साथी। कभी सुना ऐसा? किसी धर्म में नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं है कि भगवान कहता है मेरा एक एक जीवन साथी एक दो से महान है, इतना प्यारा है, प्रीत की रीत निभाने वाला है। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है, ये पल जो बीत रहे हैं इनके नशे में दिल मेरा गाने लगा है। इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे जो आज तक नहीं मिली, नहीं मिली या मिल गई, अब मिल गई। कल की अव्यक्त वाणी, उस घड़ी को बाबा ने याद किया, उस वेला को याद किया, उस पल को याद किया। हर एक ब्राह्मण जीवन के जीवन में वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, वो पल, वो पहला मिलन, वो पहली मुलाकात जहां भाग्य ने करवट बदली, जहां पर कपाट खुल गए बुद्धि के, जहां पर तकदीर जग गई और हर एक दिल ने क्या गाया, तकदीर जगाकर आई हूं। उस पल को याद करना, उस मोमेंट को जो पहला पल था निश्चय का, जिस पल लगा कि बस यही सत्य है और इसके अतिरिक्त संसार में और कुछ भी नहीं है, यही जीवन है अगर कुछ है तो, इसके अतिरिक्त सब व्यर्थ है, सारी दौड़ धूप संसार की समाप्त हुई। और जब हम भगवान के बन गए, कल रात जयंती बहन जी सुना रहे थे अस्पताल में कि एक विदेश का भाई था, ओम शांति भवन में बाबा से मिलने आया, बिल्कुल उसको निश्चय नहीं था, प्रश्न बहुत पूछता था और बाबा से मिलने बैठा। रात भर बाबा मिलते बैठे, चार सुबह चार पांच बजे तक, और वो देखता रहा दूर से। और फिर उसने आके कहा, बहन जी ने कहा कि हमको भी थोड़ा लगा कि हम कभी कभी भूल जाते हैं हमको कौन मिला। तो उसने कहा एक व्यक्ति जो इतना घंटे तक बैठे और बोलता रहे और एक भी निगेटिव बात नहीं बोले, ये कोई मनुष्य नहीं हो सकता, जरूर यही भगवान है। इतने सारे लोग उससे मिल रहे हैं, एक भी निगेटिव बात नहीं, और बोले जा रहा है बिना थके, बैठे हुए बीच बीच में जाके आ रहे, पर ये तो बैठा के बैठा ही है, जरूर ये कोई मनुष्य नहीं ईश्वर है। तो वो पल, वो घड़ी, वो मोमेंट रियलाइजेशन की, निश्चय की, उस मोमेंट का वर्णन बाबा ने आज के कल की मुरली में किया, और उसको भी हमको अपने जीवन की उस घड़ी को याद करते रहना है। तो पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा आएगी जीवन में, फिर से नवीनता आएगी जीवन, फिर से उमंग उत्साह से भरेगा। वैरायटी कहा था कल वरदान में बाबा ने, वो वैरायटी आएगी, उमंग उत्साह फिर से जागेगा, नहीं तो जीवन निरस डल। इसके लिए भक्ति मार्ग में कहते हैं, जब भी किसी तीर्थ स्थान पर जाओ, आने के बाद उस तीर्थ यात्रा का स्मरण करो एकांत में बैठकर, कि क्या क्या वहां देखा, क्या क्या पाया, किन किन साधु संत योगियों महात्माओं से हम मिले, उन सब का चिंतन करो एकांत में, नहीं तो उधर का असर समाप्त हो जाएगा। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी उस पल को याद करना है, उस पहले परिवर्तन की घड़ी को। तो कल की मुरली में कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे मिल रहा है? जीवन साथी बाद में, मिल कौन किससे रहा है? भाग्य बनाने वाला बाप अपने भाग्यवान बच्चों से मिल रहा है, और बाबा ने उस घड़ी की याद दिलाई जिसको 12 अलग अलग वाक्यों में बाबा ने वर्णन किया है, 12 रीति से वर्णन किया है। वो जो घड़ी थी निश्चय की, एक जेन मास्टर बोकाजो अपने गुरु के पास रोज जाता था और कहता था, अनुभव कुछ भी नहीं है, कितना भी सिखाओ तुम योग मेडिटेशन, कुछ होता कुछ नहीं, बुद्धि भटकती रहती है, क्या करूं, तुम बातें तो बहुत बताते हो वैराग्य की, इसकी उसकी, पर अंदर से खाली है पूरा, किताबें पढ़ता हूं पर खाली है सब, होता कुछ नहीं। बहुत सिंसियर था वो, ऐसी बातें कोई बताता थोड़ी है, छुपा के रखता है, अनुभव हो नहीं रहा है, बताएंगे हमको बहुत दिव्य अनुभव हुए, इधर लाइट देखी उधर लाइट देखी, बाबा ने टचिंग करा दी, ये हुआ वो हुआ। तो वो कहता है हो कुछ नहीं रहा है। उसके जीवन में दिखाया, एक दिन वैसे ही बैठे रहता है और झाड़ का एक पत्ता, सूखा पत्ता, स्वतः ही टूट कर नीचे गिर जाता है। बस उसी क्षण रियलाइजेशन हो जाता है, उसी क्षण परम वैराग का उदय हो जाता है, उसी क्षण एक अविस्मरणीय एक महाघटना उसके जीवन में हो जाती है। देखता है पत्ता गिरा और जीवन की नश्वरता का ज्ञान हो जाता है, सब कुछ ऐसा ही भस्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। भारत में करनी घोर ब्राह्मण होते हैं, मुरलियों में वर्णन आता है, जब भी किसी की मृत्यु होती है तो चिता जलने के बाद उसको ब्राह्मण, वो जो रिश्तेदार है, उनको थोड़ा बाहर लेकर आता है, सबको एक एक पत्ता देता है झाड़ का, और फिर उसको तोड़ता है और कहता है कि वो जो अब चला गया उससे तुम्हारा संबंध भी टूट गया, जैसे ये पत्ता टूट गया उसी तरह। तो उस बोकाजो के जीवन में परम घटना घट जाती है, किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं, किसी ने कुछ बताया नहीं, केवल देखा, पत्ता गिरा, अर्थात जीवन नश्वर और वैराग उदय होता है। और जहां वैराग आ गया, अध्यात्म में गति तीव्र से तीव्रतर हो जाती है। तो बाबा ने 12 चीजें बताई है उस खुशी की घड़ी की, उस प्रथम मिलन की वेला की, उस निश्चय की वेला की, कितने शब्दों में वर्णन किया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। सबसे पहला, तकदीर जब जगी, जाना माना और क्या कहा, मेरा बाबा, कहां कहा, किससे कहा? किसी व्यक्ति से नहीं, शब्दों से नहीं, मौन से कहा। रूह रूहान, रूह रूहान अर्थात बातचीत नहीं, चिटचाट नहीं, स्पिरिचुअल चिटचाट अर्थात रूह की रूह के साथ बातें, मौन में वार्तालाप। आई शैल स्पीक टू दी इन साइलेंस की वार्तालाप। तो सबसे पहला ये वो घड़ी थी आत्मा की, आत्मा के निश्चय की, तकदीर खुलने की, तकदीर जगा कर आई हूं कहने की, कमबख्त से बख्तावर बनने की। जाना, माना और फिर कहा। क्या जाना और क्या माना और क्या कहा? क्या जाना? जाना कि बस यही सत्य है, बाकी सब झूठ। माना कि बस यही है वो परमात्मा, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे, यही आज तक मिली नहीं थी, यही है वो, इसी के लिए भटक रहे थे, इसी को पाने की प्यास थी, तलाश थी। और वो पल जाना, माना और क्या कहा? मेरा कहा। मेरा ऐसे किसी को नहीं कहता है मनुष्य, बड़ी मुश्किल से कहता है मेरा, और उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि तुम मेरे तो तुमको अब ये करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहली बात। दूसरी, सारे कल्प की ये कैसी घड़ी थी? सबसे श्रेष्ठ और सबसे सुहावनी घड़ी, ऐसी घड़ी और दूसरी कोई नहीं थी। ये उस मोमेंट, उस घड़ी की बातें बाबा कर रहा है जिस समय आत्मा को निश्चय हो गया कि यही है, और हर एक की ये घड़ी अलग अलग है। तो उस घड़ी को याद करना है और उसके महत्व को जानना है कि वो घड़ी सबसे सुहावनी और सबसे श्रेष्ठ जिस दिन निश्चय हो गया, समझ में आ गया, बुद्धि के कपाट खुल गए, ताला खुल गया, आत्मा उस परम चुंबक की ओर आकर्षित होने लगी, जो विकारों की मैल थी हट गई, एक बोध हुआ, परम बोध। जेन में इसको कहते हैं संबोधि, एनलाइटनमेंट। केंशो, साटोरी, अलग अलग नाम अलग अलग धर्मों में, वो मोमेंट जहां आत्मा को रियलाइज हो जाए। जरूरी नहीं है कि कोई रोज सुन रहा है तो उसको रियलाइज हो ही जाएगा। आज सुबह की मुरली में एक जगह था, मुरली लिखो और रिवाइज करो। क्यों? क्योंकि खाली लिखने से जरूरी नहीं रियलाइज हो जाएगा, रिवाइज करो, रिवाइज करते करते रियलाइज होगा शायद, मन में रिवाइज करते रहो तो एक पल ऐसा आएगा कि हजारों बार जो बात सुनी है उसका एक नया अर्थ पता चलेगा। हजारों बार सुना है निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, प्रयत्न कितनी कर रहे हैं, जारी है, परंतु हो नहीं रहा है, निर्विकारी नहीं हो रहे, पर एक दिन ऐसा पता चलेगा कि निर्विकारी होने का रहस्य, निर्विकारिता तो परिणाम है, काम निर्विकारिता पर नहीं करना है, काम अशरीरी पर करना है। जब अशरीरी बनेंगे अपने आप निर्विकारिता आएगी, और फिर निरंकारिता उसका भी परिणाम होगा। विकारों को जीतना परिणाम होगा, स्वस्वरूप में स्थित होना सहज पुरुषार्थ होगा। तो यह दूसरी बात। तीसरी, अनाथ से क्या हो गए? सनाथ। भटक रहे थे, कहां पर पड़े हुए थे? किसी मुरली में बाबा ने कहा तुम कहां पर पड़े थे? कीचड़े के डब्बे में मैंने तुमको देखा, वहां से उठाया है तुमको, निकल ही नहीं रहे थे, वही दुबक के बैठे थे, मस्ती में, गंदगी में, दुर्गंध में, बहुत मजा आ रहा था। तो मैंने आकर तुमको उस डस्टबिन से निकाला। तुमको मुरलियों में आता था ना, किसी का कोई बच्चा डस्टबिन में मिला, बाबा को बताया होगा किसने एक बच्चा मिला है हॉस्पिटल के बाहर डस्टबिन में, तो बाबा ने कहा तुम भी डस्टबिन में पड़े हुए थे तो मैंने तुमको निकाला है वहां से। तो पहले अनाथ थे, ऑर्फन थे, ऑर्फन की दुनिया है, भगवान ने आके सनात कर दिया। क्या से क्या बन गए, ये तीसरी रियलाइजेशन, थर्ड मोमेंट। चौथा, अप्राप्त आत्मा थे, उससे क्या बन गए, उससे क्या बन गए, प्राप्ति के दाता के बन गए। बाबा ने अपना एक नया नाम बताया, प्राप्ति का दाता। अप्राप्त थे, कंगाल थे, भिखारी थे, भटक रहे थे, भीख ही मांग रहे थे, हाथ में कुछ नहीं था, तो प्राप्ति के दाता के बन गए। ये चौथी बात। पांचवी, वो पहली परिवर्तन की घड़ी थी जीवन में, पहली परिवर्तन की घड़ी जब बाप ने अपना बनाया। स्वर्ग का जीवन भी ऐसा नहीं होगा, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जीवन का, उसको भी याद कर लिया जाए अभी तो धक से परिवर्तन आएगा। तब कैसे एकदम से परिवर्तन आया था, एकदम से शूद्र के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई थी, वैसे ही अभी विकारों के प्रति, संसार के प्रति, विकारी संबंधों के प्रति, व्यर्थ के प्रति, निगेटिव के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाएगी और वैराग आएगा, और वैराग आत्मा को उड़ाएगा। पांचवी बात। छठवी, मेरे को क्या कर दिया, तेरा कर दिया, बोझ समाप्त हुआ, हल्का हो गए, भारी था मन, बहुत सारे बोझ लेकर घूम रहे थे। ये कितना अच्छा अभ्यास है कि बाबा के सामने बैठना और सब कुछ अर्पण कर देना, सब कुछ स्वाहा कर देना, हर चीज अर्पण, सारी सेवाएं तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, हल्कापन आएगा, डबल लाइट बनेंगे, बोझ नहीं होगा। तो ये छठवी। सातवी, खुशी के पंख मिल गए आत्मा को, पंख माया ने काट दिए थे, दुखी थे, उदास थे, खुशी के पंख मिलकर उड़ने लगे। पर क्या खुशी अब भी है, या ब्राह्मण जीवन में, खेचातान में, तनाव में, सेवाओं के विस्तार में खुशी गुम हो गई है। खुशी को वापस लाना है, हमारी खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बाद में। और आत्मा खुश तभी रहती है जब वो स्वस्थिति में स्थित है। आठवां, अर्श पर थे, फर्श पर थे, वहां से क्या हो गए, अर्श पर चले गए, धरती पर घूम रहे थे, अब फरिश्ता बन आसमान में घूम रहे हैं। धरती की आकर्षण कम हो गई है, धरती की आकर्षण समाप्त हो गई है, मिट्टी आकर्षित नहीं करती, मिट्टी से वैराग है, सॉइल कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस, मड कॉन्शियसनेस से वैराग है। आत्मा को देह अच्छा नहीं लगता, आत्मा आत्मा में स्थित है। आज कहा सुबह की मुरली में, देह को भूल जाओ और मुझे याद करो, कहां, उधर या इधर, परमधाम में, क्यों, सामने खड़ा है, सामने बैठा है। कई बार बाबा इस मेडिटेशन हॉल में आते थे और बहनें नीचे जाती थी बाबा के कमरे में भोग लगाने, भगवान यहां बैठा है, और बहनें थाली लेकर उधर नीचे कमरे में। पूछा भी गया था बाबा से कभी कि ये क्या है, आप तो यहां बैठे हो, भोग तो यहां लगना चाहिए, और वो वहां नीचे बाबा के कमरे में लग रहा है। बाबा कहते मैं मुझे याद वहीं करो, क्योंकि जब तुम परम धाम में मुझे याद करते हो तो परम धाम की भी शक्ति तुमको मिलती है, उस ऊर्जा, वो ऊर्जा भी तुमको मिलती है। आज तो कितनी बार कहा ना कि मुझे याद तुमको वही करना है, मैं यहां कब तक बैठा रहूंगा, बैल थक जाएगा। याद तुमको वही करना है, चाहे मैं, क्योंकि तुम्हारी तो बुद्धि की यात्रा है, यात्रा की हद परमधाम है। तुमको नहीं तो यात्रा कैसे हुई, नहीं तो तुम्हारी तो प्रैक्टिस ही चली जाएगी। ये भी कहा एक जगह, और ये भी कितना आश्चर्य, बाबा डायमंड हॉल में आ रहे और फिर बीच में ड्रिल करते हैं, एक सेकंड में परमधाम में स्थित हो जाओ। अरे तुम बैठे यहां हो, हम वहां क्या करें, तुमको तो यहां याद करना है। वो भी ऊपर चला जाता होगा। वो तो असंख्य रूप धारण कर सकता है, एक ही जगह स्थित होकर असंख्य आत्माओं को असंख्य अनुभव कराता है, ऐसा उसका स्वरूप है। उस दिन भी कहा, एक कहानी बताई थी बहुत सुंदर हमको जो लगती है। एक व्यक्ति एक जंतु को, एक प्राणी को देखकर आया जंगल में और अपने मित्रों से कहने लगा, एक प्राणी देखा लाल कलर का। मित्र ने कहा, लाल कलर का कौन सा जंगल और कौन सा झाड़, वही जंगल और वही झाड़, मैंने भी प्राणी देखा पर हरे कलर का था। तीसरे ने कहा, कौन सा झाड़, अरे हरा नहीं था वो प्राणी, वो तो नीले रंग का था। फिर और दो तीन मित्र आ गए, झगड़ने लगे, हमने भी देखा है पर किसी ने कहा काला, किसी ने सफेद, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। सारे मित्रों ने कहा चलो जंगल में ही जाके देखते, उस झाड़ के पास, वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ होता है झाड़ के नीचे। उससे पूछा जाता है कि बताओ यहाँ जो प्राणी है झाड़ पर जो रहता है कौन सा रंग है उसका, और सबने अपने अपने रंग बताया। उसने कहा तुमने जितने भी सुना है सब राइट है, क्योंकि वो गिरगिट रहता है यहां पर, और कभी कभी तो उसका कोई रंग भी नहीं होता है, कभी लाल, कभी पीला, कभी नीला, कभी उसका रंग भी नहीं होता है, परंतु जान वही सकता है जो पेड़ के नीचे रहता है। जान भगवान को वही सकता है जो भगवान के समीप रहता है, उसके सारे रंगों को वो जान जाता है। जो उससे बहुत दूर रहता है वो कहते रहेगा कि वो तो ऐसा है, वो तो वैसा ही है, परंतु वो ऐसा भी है, वैसा भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है, ऐसा भी, वैसा भी, और वैसा भी। उसके अने असंख्य भाव है। भगवान को जानना अर्थात उस पेड़ के पास रुकना पड़ेगा जो कि बार बार देखते रहे और उसके सारे रूपों को जान जाए। जो नहीं जानते वो झगड़ा करते रहते हैं कि नहीं बाबा तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही है। तो कहां थे हम, उड़ रहे थे अर्श से, फर्श से अर्श, नौवा पत्थर थे, क्या बन गए, पारस। बुद्धि पत्थर जैसे हो गई थी, सोचना ही बंद हो गया था। वही सब कर रहे थे जो भक्ति मार्ग में सारे लोग करते। अगर भगवान नहीं मिलता तो बैठे होते कहीं झाड़ के नीचे हनुमान चालीसा या कोई मंत्र जाप करते हुए या आरती पूजा करते हुए। आज कहा ना रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा, मन मनाभव अर्थात रूहानी यात्रा मुतली में आया है, वही यात्राएं करते बैठते तीर्थ न्यारे। दसवा, अनेक चक्र से क्या हो गए, छूट गए। और कौन सा चक्र फिराने लगे, स्वदर्शन चक्र। मुरली में एक जगह बाबा ने और एक बात कही है, कोई कोई बच्चे माया के चक्र में आ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, भूल हो जाते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं और फिर कहते हैं बाबा ये अब क्या करें। बाबा कितनी बार माफ करते हैं, तीन बार, और चौथी बार आज कहा ना कौन सजा देता है, मैं तो सजा नहीं देता हूं, सजा देना उसका काम है, मैं तो बाप हूं, मुझे रिपोर्ट करो, हो सकता है तुम्हारी सजा थोड़ी कम हो जाए, कोई जिसको ताउम्र सजा मिलती है अगर उसका गुड बिहेवियर होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है 10-15 साल में। इसके साथ जुड़ी और एक बात है, बाद में बताएंगे। तो अनेक चक्रों में थे, यहां का चक्र, वहां का चक्र, वहां का चक्र, वो सारे चक्रों से छूटकर अब सदर्शन चक्रधारी, संबंधों का चक्र, विकारों का चक्र, इच्छाओं का, तृष्णाओं का चक्र, डिजिटल चक्र शायद अब भी चालू है, इलेक्ट्रॉनिक चक्र कि उससे छूट गए। तो ये 10वां, वो सारे चक्र समाप्त हुए। 11वां, बृहस्पति की दशा। 11वां, बृहस्पति की दशा से तन मन धन सारी प्राप्तियां हो गई। और लास्ट क्या खुल गया, 3रा, नेत्र खुला और बाप को देखा। उस पल, उस मोमेंट, तब तक तो बंद ही था, उस मोमेंट ऐसा आया कि नेत्र खुल गया। इस दुनिया को इस नेत्र से देखना है, इन नेत्रों से देखोगे तो आकर्षण होगा, संसार दिखाई देगा, इन नेत्रों से देखोगे तो क्या दिखाई देगा, महाविनाश, सब मरे पड़े हैं। ज्ञान युक्त नेत्र। तो मुरली में टोटल 10 बातें हैं, उसकी 5 बातों की चर्चा हम करेंगे। 5 बातें आज सुबह चर्चा हम कर चुके छोटी क्लास में। तो सबसे पहली बात थी तकदीर की, उसमें इतनी 12 चीजें बाबा ने बताई कि तुम्हारी तकदीर जिस दिन जग गई उस दिन ये सारा कुछ हो गया। अब इस मोमेंट को, इस पल को बार बार याद करते रहो, कैसे बृहस्पति की दशा हुई, कैसे 3रा नेत्र खुल गया, कैसे कहां थे और कहां पहुंच गए, कैसे खुशी के पंख मिल गए, कैसी सारी प्राप्तियां हो गई, इन सारी चीजों को बार बार याद करते रहना। और अलग अलग शब्दों में बाबा कहते हैं अपनी बात, ये देखा कितने शब्दों का प्रयोग है, कितनी उपमाएं हैं, कितनी उसमें रूपक है, कितने उदाहरण हैं, ताकि एक एक सा बोर ना हो जाए। कितना रमणीक ढंग से वो सिखाता है, समझाता है। तो ये सबसे पहली बात थी। दूसरा, ब्रह्मा बाबा ने क्या बोला और शिव बाबा ने क्या बोला, ये दूसरा पॉइंट। ब्रह्मा बाबा ने कहा, वाह क्या वाह, आदि देव के आदि काल स्वराज्य अधिकारी। और शिव बाबा ने क्या कहा, वाह मेरे अनादि, अनादिकाल के अविनाशी अधिकार वाले, अनादि अविनाशी अधिकार वाले बच्चे। दोनों ही बाप दादा हमारी क्या कर रहे, महिमा कर रहे हैं। ये कितना अच्छा गुण है बाबा में, आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन। शायद सामने वालों में इतने गुण हो भी ना, परंतु महिमा तो बहुत ही करता है, महिमा कर करके ही पुरुषार्थी बना दिया, महिमा कर करके ही इतना पिघला दिया कि अब लगने लगा भाई मैं भी कुछ हूं। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात, बाप दादा को कौन सा नशा है, इस पर तो टॉपिक है बहुत बड़ा। भगवान को कौन कौन से नशे हैं, राजीव भाई भगवान को कौन से नशा है, बाबा को नशा है कि मेरे इतने सारे जीवन साथी और एक एक, एक से महान, एक से बढ़कर एक, एक एक दो से आगे है, ऐसा वाक्य पूरे इतिहास में और कहीं नहीं है। मतलब कौन आगे है, एक एक दो से आगे है, आगे कौन है इसका मतलब, एक एक दो से आगे है। एक एक दो से आगे, बाबा का एक महावाक्य, दूसरा बना बनाया ड्रामा है, एक तो बना हुआ भी है और बनाया हुआ भी है, ऐसे वाक्य और कहीं नहीं है इतिहास साहित्य में। बना बनाया, बनाया हुआ भी है और बना भी है पहले से ही। तो बाबा को कौन सा सबसे ज्यादा नशा है कि संसार में देखो संसार के साथी क्या करते हैं, प्रीत निभाते हैं क्या, असंतुष्ट होते, धोखा देके चले जाते हैं। और मैं देखो, मेरे ये जो जीवन साथी है, जीवन साथी लाइफ पार्टनर्स, ये प्रीत की रीत निभाने वाले हैं, सच्ची दिल वाले हैं, एक एक दो से महान है। संसार में जो जीवन साथी होते हैं वो कहता है पति कि मैं तो प्रिजन में हूं, बंदीगृह जेल में हूं, वो भी पूरा जीवन भर। और जो बात कही थी उधर के जेल में कोई अच्छा बिहेवियर करता है उसको छोड़ दिया जाता है 10-15 साल में, इधर तो मुश्किल है छूटना, अच्छा बिहेवियर करो तो और ही। तो बाबा कहते हैं ये मेरे जीवन साथी है। एक दाम्पत्य होता है जिनको पुरस्कार मिलता है कि उनके जीवन में 40 साल में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, तो बड़ी सभा में उनको पुरस्कृत किया जाता है कि ऐसा भी होता है मैरिड लाइफ, पति पत्नी और एक भी झगड़ा नहीं, एक भी नहीं, तो इसके लिए उनको पुरस्कार दिया जाता है। और फिर पति को कहते आप कुछ अपना अनुभव सुनाओ, ये हुआ कैसे, तो वो अपना अनुभव सुनाता है कि हमारी शादी हुई थी 40 साल पहले, हम घूमने गए तो मेरी जो पत्नी है उसको घूमने फिरने का बहुत शौक है, वो घोड़े पर बैठी और घोड़े ने उसको गिरा दिया। तब उसने घोड़े से कहा ये पहली बार है, फिर से बैठी घोड़े पर, थोड़ा देर घोड़ा चला फिर से गिराया, पत्नी ने कहा ये दूसरी बार है, फिर से घोड़े पर बैठी फिर से गिराया, पत्नी ने कहा ये तीसरी बार है, फिर से बैठी और फिर घोड़े पर चलने लगी, घोड़े ने फिर गिराया, उसने अपनी पर्स से पिस्तौल निकाली और उसको मार दिया और घोड़ा मर गया। उसका पति भाग के आया ये तुमने क्या कर दिया, पत्नी ने कहा ये तुम्हारा पहली बार है। और फिर उसके बाद में सारे झगड़े, कोई झगड़ा नहीं हुआ 40 साल में, एकदम जीवन शांत सुखी जीवन। बाबा ने भी कहा है मैं तुमको 3 बार माफ करता हूं, 3 चांस तुमको देता हूं, बीती सो बीती, अब स्मृति आ जाए। तो जब भी हम भी गलती करेंगे तो ये पहली बार नहीं, पहले पिस्तौल नहीं दिखाते। तो बाबा को भी नशा है, ये एक टॉपिक है जिस पर लिखना है। भगवान को कौन कौन से नशे है, भगवान को भी नशे, हमको नशा है वो दूसरी बात है, हमारे नशे है सामान के, हमको ये मिला वो मिला ऐसा मिला वैसा मिला, उसको भी नशा है क्या? तुम बाप को याद करते हो ताकि तुम्हारे विकर्म विनाश हो, बाप तुमको क्या याद करने से बाप को क्या फायदा है? एक अव्यक्तवाणी में बाबा ने इसका भी उत्तर दिया था, जब बाप बच्चों को याद करते हैं तो बाप की ऑथोरिटी में समर्थ ऐड हो जाती है तुम्हारी याद से। तो भगवान को भी नशा है कि मेरे इतने सारे जीवन साथी है, ये उसका नशा। ये थर्ड पॉइंट। चौथा, सेवा का नगाड़ा या प्रत्यक्षता के बारे में बाबा ने कहा, क्या बजाया तुमने और क्या बजाना बाकी है, बैंड तुमने बजाया है, नगाड़ा बजाना बाकी है, बैंड बजे है और एक दिन बैंड बजेगा भी, वो दूसरी बात है, नगाड़ा पर अभी बजाना बाकी है। तो बुलंद आवाज हो, बुलंद नगाड़ा हो, इंटरनेशनल आवाज हो, अखबार टीवी रेडियो मुख, सबसे एक ही आवाज निकले कौन सा, यही है यही है यही है। वो गीत है ना हमारा, ओ बाबा ये आपने कैसा जादू कर दिया, जिसको देखो उस वो ही कहता बाबा तो बस मेरा है। ये गीत इस समय ब्राह्मणों का है, एक दिन सकल संसार का होगा, सारा विश्व इस गीत को गाएगा, क्या गाएगा, बाबा तो बस मेरा है, ऐसा जादू हो जाएगा। तो भगवान की प्रत्यक्षता होगी, नगाड़े बजाओ, ये सेवा भी बाकी है। सात चीजों की प्रत्यक्षता होगी, सबसे पहले भगवान की, सबको पता चल जाएगा कि ये भगवान है, ये आया हुआ है, और यही सत्य है, इसके अतिरिक्त जो भी है सब कुछ झूठ। तो सबसे पहली प्रत्यक्षता है परमात्मा प्रत्यक्षता, दूसरी प्रत्यक्षता है हम ब्राह्मण आत्माओं की प्रत्यक्षता, हम प्रत्यक्ष होंगे संसार के आगे कि ये है वो भाग्यवान जिन्होंने भगवान को जाना, समझा, पहचाना, जो भगवान के संदेशवाहक बने, जो जैसे कि अवतार थे संसार में, ये दूसरी प्रत्यक्षता। तीसरी प्रत्यक्षता होगी इस ब्राह्मण परिवार की प्रत्यक्षता, ये वो परिवार है प्रभु परिवार, ईश्वरीय परिवार, डिवाइन फैमिली की प्रत्यक्षता विश्व के आगे। चौथी प्रत्यक्षता होगी इस यज्ञ की प्रत्यक्षता, ये है वो यज्ञ जो भगवान का रचा हुआ है, अविनाशी, रुद्र, अश्वमेध, गीता, ज्ञान, यज्ञ, जिसमें सारा संसार स्वाहा होगा, आहुति पड़ेगी। अगली प्रत्यक्षता होगी मधुबन की प्रत्यक्षता कि ये भूमि है जहां पर भगवान आए, परमात्मा घर की प्रत्यक्षता होगी संसार में। बाबा ने कहा है कहां से लाइन लगेगी, मुंबई से लाइन लगेगी, आबू रोड से तो कहा था, मुंबई भी कहा था कभी। तो इस घर की प्रत्यक्षता होगी, उसके बाद ज्ञान की प्रत्यक्षता होगी, यही संपूर्ण और एकमात्र ज्ञान है। और अंतिम उन आत्माओं को अपने स्वयं के स्वरूप की प्रत्यक्षता होगी, उन्हें खुद पता चल जाएगा कि हम कौन हैं और ये लोग कौन हैं। किसी एक मुरली में और बाबा ने कहा है हमारे द्वारा, जो दूसरे नंबर की पॉइंट है, हमारे द्वारा संसार को कौन सी प्रत्यक्षता होगी, हम कौन सी प्रत्यक्षता करेंगे, कौन से साक्षात्कार संसार की आत्माओं को कराएंगे। उसमें भी सात प्रकार है। सबसे पहला तो फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार, जो धर्म देवी देवताओं को नहीं मानते वो एंजल्स को मानने वाले धर्म है, क्रिश्चियनिटी, जीविश, इस्लाम, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, ये इन देशों में मिडल ईस्ट, वहां पर भगवान की हमारी जो प्रत्यक्षता है एंजल्स के रूप में होगी, उनको एंजल्स दिखेंगे सब जगह। एक दूसरी प्रत्यक्षता हमारी साक्षात्कार इष्ट देव के रूप में, भगत आत्माओं को इष्ट देव दिखेंगे हमें, जो हनुमान का भक्त है वो हनुमान को देखेगा, देवी का भक्त देवी को देखेगा, जो जिसकी भावना वो उसको वैसा दिखाई देगा। तीसरी प्रत्यक्षता हमारी या तीसरा साक्षात्कार जो हम संसार की आत्माओं को कराएंगे वो पॉइंट ऑफ ज्योति बिंदु का। बाबा ने कहा एक समय आएगा केवल ये बिंदु दिखाई देगा उनको, तुम्हारा शरीर दिखाई नहीं देगा, केवल पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा चमकता हुआ सितारा संसार की आत्माएं देखेगी प्रत्यक्षता के समय। चौथा लाइट का साक्षात्कार होगा, शरीर दिखेगा ही नहीं, आत्मा भी नहीं, केवल लाइट दिखेगा बस, ऐसा साक्षात्कार होगा। उसके बाद में अगला संसार की आत्माओं को ये साक्षात्कार होगा कि ये अल्लाह लोक है, भगवान के बच्चे है, यही है जिन्होंने भगवान को जाना, पहचाना, माना, समझा, अपना बनाया, हमने नहीं माना, रोएंगे, दुखी होंगे, उल्हाने देंगे, अल्लाह लोक। अगला है विश्व कल्याणकारी उद्धार मूर्त, आधार मूर्त, संसार के जो सबसे पावरफुल आत्मा है ये है, ऐसा उनको साक्षात्कार होगा। और लास्ट हम में शिव बाबा दिखेगा, हम में वो दिखेगा, फिर भक्ति मार्ग में याद करेंगे शिव शंकर एक है, शंकर में शिव दिखाई देगा। हमारे द्वारा परमात्मा साक्षात्कार, हम दर्पण बन जाएंगे जिसमें शिव बाबा की छवि वो देखेंगे। तो ऐसे सात प्रकार के साक्षात्कार हम आत्माओं से संसार की आत्माओं को होंगे, और सात प्रकार के प्रत्यक्षता। संगम युग के दो भाग है, एक अभी जो चल रहा है और एक भाग होगा पार्ट टू प्रत्यक्षता वाला, जहां पर चहुओ और प्रत्यक्षता हो जाएगी। यही सत्य है, यही है, यही है, यही है। भाग भाग के लोग आएंगे, पर उनके पास उस समय कैसे उनका कोर्स कराएंगे? हम बिठा के कोर्स कराएंगे? एक सेकंड में कोर्स होगा, दृष्टि से केवल केवल एक शब्द हम कहेंगे, तुम आत्मा हो, और वो स्थित हो जाएंगे। ये कहेंगे, ये तुम्हारा बाप, हो गया 7 डेज का कोर्स, और सीधा चलो ऊपर। तो वो प्रत्यक्षता का समय होगा, ऐसा समय आएगा, और उसके लिए हमें अपने आप को कितना पावरफुल करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। एक एक जो स्वरूप बताए, ज्योति बिंदु, लाइट का स्वरूप, ज्योति बिंदु का स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, इष्ट देव का स्वरूप, एक एक स्वरूप का अभ्यास, एक एक स्वरूप में स्थित होना, तब जाके वो कर सकेंगे प्रैक्टिस। वो है हमारा ही स्वरूप, और ये पांचों ही सातों ही स्वरूप ऐसे हैं कि जिसमें जिसका अभ्यास करते करते अशरीरी अवस्था है, और जो कहा अशरीरी, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, विकारों को जीतने का पुरुषार्थ छोड़ देना। पुरुषार्थ कौन सा करना है? अशरीरीपन का। तो वो निर्विकारिता परिणाम रूप में आएगी। विकार अभाव मात्र है कुछ चीजों का, पवित्रता का अभाव है, इसलिए काम विकार है। लड़ाई काम विकार से करनी नहीं है, पवित्रता को लाने के लिए करनी है। जब पवित्रता आ जाएगी, अंधकार विलीन हो जाएगा, क्योंकि पवित्रता प्रकाश है, काम अंधकार। तो बाबा ने कहा, आवाज बुलंद करो, इंटरनेशनल आवाज हो, माइक बनकर जो आए वो क्या बनकर जाए? मैसेंजर बनकर जाए। सेवा अच्छी की है, बाप दादा की जीवन क्या है? विश्व सेवा। बाबा ने देखो अपना जीवन साथी भी बना दिया, बताया कौन है और अपनी जीवन की क्या है वो भी बता दिया। तो बाप दादा की जीवन है विश्व सेवा, तो तुम्हारी भी क्या होनी चाहिए, क्योंकि तुम प्रीत की रीत निभाने वाले हो। प्राण जाए पर ये रीत ना जाए, तो जो उसका काम वो हमारा काम। तो ये हो गया चौथी बात। पांचवी बात बताई बाबा ने लगन के विषय में, पोलैंड पुर्तगाल लगन। लगन से क्या होता है? विघन समाप्त। लगन से क्या होता है? समस्या समाप्त। और जहां स्नेह है वहां पर सहयोग है, और जहां स्नेह है वहां पर असंभव संभव है। लगन अर्थात क्या? धुन। लगन अर्थात क्या? धुन लग जाए, बस करना है करना है, और कोई दूसरा विचार ही नहीं है, वही करना है वही करना है, बस लगन लग गई, धुन लग गई, एक ही होना, एक ही फूरना, बस एक ही विचार और एक ही संकल्प। कौन सा? निर्विकारी बनना है, संपूर्ण पावन बनना है, कंप्लीट प्यूरिटी को हासिल करना है। उस प्यूरिटी के प्रति ऐसी कशिश, बेचैनी आ जाए थोड़ी सी कि क्यों यह अपवित्रता है। एक प्रश्न है, जैसे हम किसी का बीपी बढ़ता है तो बीपी देखते हैं, और किसी का शुगर बढ़ता है तो शुगर देखते हैं। निर्विकारिता कितनी आई वो कैसे देखेंगे? उसके लिए कौन सी ब्लड टेस्ट है? कैसे पता चले? चेहरा बताएगा। अच्छा अच्छा पर चेहरा धोखा भी बहुत देता है धोखा भी बहुत देता है। स्वप्न, जब स्वप्न में पांचों ही विकार में से कोई भी विकार स्पर्श ना करे, स्वप्न में जरा भी प्रभाव ना हो तो एक तो स्वप्न है कि स्वप्न में कोई भी विकार की प्रवेशता नहीं है, स्वच्छता है, प्यूरिटी है। इसका अर्थ हमारी निर्विकारिता की स्टेज आगे आगे बढ़ रही है। एक तो ये, और कैसे पता चले? हुँ? कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त, इंद्रियों की चंचलता समाप्त होगी। इंद्रिय जो लालायित रहते हैं, चंचल होते हैं, वो कम कम होती जाएगी। और क्या होगा, निर्विकारिता हमारी बहुत बढ़ रही है। कल जो निर्विकारी स्टेज थी, आज उससे आगे है। स्थिरता आएगी, आंखें स्थिर हो जाएगी, नैन स्थिर हो जाएंगे। और क्या प्रभाव है, हमारे संकल्प शक्तिशाली हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, और हमारी वाणी में एक अद्भुत प्रभाव आ जाएगा। एक पावर, एक एनर्जी उसमें प्रवाहित होगी प्यूरिटी की। तो बाबा ने कहा लगन, ऐसी लगन निर्माण करनी है अपने अंदर। तो मुरली में पांच बातें सबसे पहले बताई, तकदीर जगाना। दूसरा बताया ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा और शिव बाबा ने कहा क्या कहा। एक ये कितना अच्छा अभ्यास है कि हम बाबा के सामने स्वयं को खड़ा करें और ये देखे कि बाबा मेरे लिए क्या सोचता होगा, क्या कहता होगा, उसको मुझ पर किस बात में नाज होगा, उसको कुछ है क्या कि जिस पे उसको नाज हो अपनी। इस तरह से भी एक चेकिंग कर सकते हैं हम। तीसरा बताया बाप दादा को क्या क्या नशा है, तो यहां नशा उसने बताया जीवन साथी का। और अगला प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाओ, बैंड नहीं, प्रत्यक्षता का क्या बजाओ, नगाड़ा। और लास्ट जो बताया लगन। ऐसे याद प्यार है कि मुरली में छिपा हुआ है कहीं, तो हम बनाएंगे ऐसे। कैसे, लगन में मगन रहने वाले बच्चों को, ऐसे स्नेह में रहने वाले बच्चों को, स्नेह से असंभव को संभव करने वाले बच्चों को, असहयोगी को सहयोगी बनाने वाले बच्चों को, ऐसे लगन से समस्याओं को समाप्त करने बच्चों को, ऐसे तकदीर जगा कर आई हूं गीत गाने वाले बच्चों को, ऐसे भाग्यवान बच्चों को, ऐसे नशे में रहने वाले भगवान को नशे में लाने वाले बच्चों को। हम देखो कैसे बच्चे है कि हमको देखकर उसको नशा चढ़ता है तो भगवान को भी एकदम वो भी एक डोलने लगता है, उसको भी नशा चढ़ जाता है, वो भी माशुक पियक्कड़ माशुक बन जाता है स्पिरिचुअल ड्रंकर्ड। तो ऐसे बच्चों को, और कैसे बच्चों को, लाइट बच्चों को, प्रत्यक्षता करने वाले बच्चों को, प्रीत की रीत निभाने वाले बच्चों को, भगवान के जीवन साथी बच्चों को, और सेवा में लगे हुए बच्चों को, और बिजी रहने वाले बच्चों को, और विश्व कल्याणकारी बच्चों, मुरली का बताओ थोड़ा, और वो ऊपर रहने वाले बच्चों को जिनको पंख मिले हैं वो बच्चों को। तो ऐसे डैश 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 बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।